हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 252। उन्हें वहाँ देखकर अनय को समझ आया कि उसकी पत्नी आज उसके साथ अच्छी तरह पेश आ रही थी, और अच्छी तरह पेश आना तो दूर, वो कुछ एक्स्ट्रा स्वीट बन रही थी। ये उसके लिए कोई नया नहीं था। उन दोनों के माता पिता के सामने उसे और उसकी पत्नी को इसी तरह का दिखावा करना पड़ता था, लेकिन पिछले काफी दिनों से वे अकेले ही रह रहे थे, इसलिए अनय इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब सास के सामने होने की वजह से उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उनके सामने अच्छा और सामान्य व्यवहार करने के अलावा वो वैसे भी मनस्वी के साथ अच्छी तरह पेश आता था, लेकिन मनस्वी कभी भी उसके अच्छे व्यवहार को सराहती नहीं थी और हमेशा उसके साथ बुरा और रूखा व्यवहार करती थी। इसलिए कभी कभी निराश होकर अनय भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर देता था। ये सब कुछ सोचते हुए अनय जल्दी से आगे बढ़ा और उसने झुककर अपनी सास के पैर छू लिए उनका आशीर्वाद लेने के लिए। उन्होंने एकदम लाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और वो दिखने में 40 से 50 के बीच की उम्र की लग रही थी। उनका चेहरा मनस्वी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता था, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान और नरमी दिख रही थी, जबकि मनस्वी का चेहरा हमेशा रूखा और सख्त ही होता था। खुश रहो बेटा, तुम्हारे जैसा दामाद तो किस्मत वालों को मिलता है, अनय के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए उसकी सास ने कहा। पीछे खड़ी मनस्वी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए धीमे से बुदबुदाया, व्हाटएवर। और आपके जैसी सासू माँ भी मुझे इसीलिए मिली है क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ, और वैसे भी आखिर ये आपका ही तो घर है, अनय ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर से उसके पीछे खड़ी मनस्वी ने अपने मन में कहा, आपका ही तो घर है, इनवाइट तो ऐसे कर रहा है जैसे इसका घर हो, ये भूल जाता है क्या कि ये भी खुद मेरे घर में रहता है, इसका खुद का क्या है। ठीक है बेटा, लेकिन बस तुम दोनों को देखने का मन था और बहुत दिनों से मैं तुम दोनों से मिली नहीं थी, इसलिए ही आ गई। मनस्वी तो कभी मुझसे मिलने आती नहीं और ना ही मुझे इनवाइट करती है, ऐसा समझो सिर्फ तुमसे मिलने ही आई हूँ मैं यहाँ, मनस्वी की तरफ एक नज़र उठाकर देखते हुए उसकी माँ ने कहा। उनकी इस बात पर मनस्वी चिढ़ कर बोली, मम्मी अपनी सिटी से इतनी दूर तुम यहाँ क्या मुझे ताना मारने के लिए आई हो। अनय और उसकी माँ को इस तरह मुस्कुराकर बात करते हुए सुनकर मनस्वी पहले ही चिढ़ी हुई थी, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा और निराशा उन पर निकालती हुई बोली, अनय बेटा मैंने कौन सी किसी को कोई ताना मारने वाली बात बोली, तुम ही बताओ, मनस्वी की माँ ने अनय से पूछा। अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा आपने, लगता है कुछ लोग खुद ही इमेजिन कर रहे हैं अपनी इंसल्ट, अनय ने हंसते हुए कहा और हाई फाई के लिए हाथ उनकी तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने भी हाई फाई देते हुए हाथ मारा। उन दोनों को इस तरह अपना मजाक उड़ाते हुए देखकर मनस्वी पैर पटकते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी और सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ चली गई। उसके इस तरह ऊपर जाने पर अनय उसकी तरफ ही देख रहा था और उसकी सास ने भी ये बात नोटिस कर ली। अरे बेटा कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया ना मैंने, लग रहा है नाराज हो गई, देखो कहीं सारा गुस्सा तुम पर ही ना निकल जाए, मनस्वी की माँ ने थोड़ी फिक्र करते हुए कहा। डोंट वरी मम्मी, मैं देखता हूँ जाकर, इतना बोलते हुए अनय भी ऊपर सीढ़ियों की तरफ ही बढ़ गया। अनय कुछ सोचते हुए मनस्वी के कमरे के बाहर रुक गया, क्योंकि वे दोनों अलग अलग कमरों में रहते थे और मनस्वी को पसंद नहीं था कि वो उसके कमरे में भी आए, क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ भी पति पत्नी के रिश्ते जैसा नहीं था। कमरे के अंदर से ही मनस्वी ने दरवाजे से पलट कर जाते हुए उसे देख लिया। वो उसे आवाज लगाकर रोकते हुए बोली, एक मिनट रुको अनय, अंदर आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मनस्वी ने उसे खुद ही अपने कमरे में बात करने के लिए बुलाया। ये सुनकर अनय को तो जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आज काफी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा था, इसलिए एक गहरी सांस लेते हुए वो कमरे के अंदर आया और हैरानी से मनस्वी की तरफ देखने लगा। उसे इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाकर मनस्वी थोड़ी सी असहज हो गई, लेकिन उसने इस बात को छिपाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या हुआ अनय, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या जो इस तरह से देख रहे हो, अनय या बेबी, अनय एकदम से बोला तो मनस्वी उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी और फिर उससे नजरें चुराती हुई बोली, क्या बकवास कर रहे हो, अब तक तो तुम्हें भी समझ आ गया होगा कि वो सब सिर्फ एक नाटक था, मैं नहीं चाहती कि मॉम को इस बारे में कुछ भी पता चले। इस बारे में मतलब किस बारे में, हमारा ये जो नाम का रिश्ता है, और रिश्ता भी, मुझे तो बस हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि तुमने कोई एहसान किया है मुझ पर और उसी एहसान का बदला तुम मुझ पर अपना गुस्सा और निराशा निकाल कर करती हो, अनय ने कड़वाहट से कहा। उसकी बात सुनकर मनस्वी फिर से उसी तरह हैरान होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा मैं ही हमेशा ऐसा करती हूँ क्या? तुम तो जैसे बहुत अच्छी तरह पेश आते हो मुझसे, वैसे जरूरत भी क्या है हमें एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करने की? मॉम बस कुछ ही दिनों में यहाँ से चली जाएंगी। तुम खुद इस बारे में सोच लो, मैंने कब बुरा व्यवहार किया तुम्हारे साथ? मेरा रिएक्शन होता है हमेशा तुम्हारे एक्शन के बाद ही। और सही कहा, कुछ ही दिन में मम्मी वापस चली जाएंगी, उसके बाद तुम्हारा असली रूप भी फिर से वापस आ जाएगा। गुड, कीप इट अप मनस्वी, अनय उसके चेहरे के सामने एक बार ताली बजाते हुए कहा और फिर मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगा। मनस्वी को उसकी बातें किसी ताने की तरह लग रही थीं और वो ये बात जानती भी थी कि उनकी शादी और ये रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो खुद है। लेकिन उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस पर ही फोकस करती थी, जिसके लिए उसे लगता था अनय बिल्कुल नाकाबिल है और उसके बिल्कुल भी लायक नहीं है, और उसे बस अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उससे शादी करनी पड़ी थी। इन सब बातों को सोचने के लिए अभी मनस्वी के पास वक्त नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से आगे बढ़कर अनय का हाथ पकड़ते हुए कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? मनस्वी के इस तरह हाथ पकड़ने पर अनय ने दूर हटकर उसकी तरफ देखा तो मनस्वी ने जल्दी से उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, आई एम सॉरी, आई डिड नॉट मीन इट, लेकिन तुम अभी अपने कमरे में वापस मत जाओ क्योंकि मॉम को इस बारे में नहीं पता और मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। अच्छा, तो अपनी मॉम को भी धोखा देना चाहती हो ये सब करके? कम ऑन मनस्वी, ग्रो अप, खुद की गलतियाँ छिपाने के लिए आखिर किस किस को धोखे में रखोगी? और सबसे बड़ा धोखा तो तुम बस खुद को ही दे रही हो। पता चलने दो ना मम्मी को हमारे रिश्ते की सच्चाई, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है तुम्हें या फिर मुझे? अनय ने एकदम ठंडी भारी आवाज में कहा और बिना रुके कमरे से बाहर आ गया और अपने कमरे में चला गया। मनस्वी एकदम थकी हुई वहाँ पर अकेली खड़ी रह गई और उनकी बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में वो खुद को और सबको धोखा दे रही है, और अगर उसकी मॉम को पता चल भी गया तो आखिर सच तो यही है, और क्या सच में अनय को और उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है? सुनैना ने रवि से बात करके आदित्य की सारी दवाइयाँ घर पर मंगवा ली थीं और रात का डिनर वे पुलाने घर से करके ही आए थे। गीता ने पहले ही उनके लिए कुछ नहीं बनाया था क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था, इसलिए स्वीटी रेस्ट करने के लिए अपने कमरे में चली गई और आदित्य और सुनैना भी अपने कमरे में वापस आ गए थे।
सुनैना आदित्य की दवाइयाँ निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, टाइम पर अपनी दवाइयाँ लो आदित्य, और तुम्हें हेपेटाइटिस बी है, आज के बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी ड्रिंक करते हुए नहीं देखना चाहती क्योंकि ये बीमारी तुम्हें ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से ही हुई है। ऐसे में अगर तुम लापरवाही करोगे ना तो ये और भी बढ़ जाएगी, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है ना? सुनैना ने एकदम ही वार्निंग देने वाले अंदाज में उससे ये सब कहा तो आदित्य ने एकदम मासूमियत से बच्चों की तरह सिर हिलाया और चुपचाप उसके हाथ से दवाइयाँ ले लीं। उसके दवाइयाँ लेते ही सुनैना ने ग्लास में पानी निकाला और फिर पानी भी उसकी तरफ बढ़ा दिया। आदित्य ने चुपचाप अपनी दवाइयाँ खा लीं। उसके बाद वो बोला, सच कहूँ तो सुनैना, मुझे जीने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, और मुझे पता है कि अल्कोहल मुझे कितना नुकसान करती है, लेकिन मैं जानबूझकर ही पीता था क्योंकि कोई भी वजह नहीं थी मेरे जिंदा रहने की। सुनैना ने आदित्य के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, चुप करो, कुछ भी मत बोलो और मुझे ये सब नहीं सुनना, और वैसे भी अब तो मैं हूं ना, क्या ये वजह काफी नहीं है तुम्हारे लिए? या फिर बस ऐसे ही बोलते हो कि मुझसे प्यार करते हो? क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं कभी भी उसे अकेला छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचते, तो क्या मैं सच में एक बार भी तुम्हारे ख्याल नहीं आती? आदि, तुम्हारे बाद आखिर मेरा क्या होगा? मेरा भी तो कोई नहीं है, आखिर मेरे जीने की वजह भी तो तुम ही हो। इतना बोलते हुए सुनैना की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपा लिया। आदित्य भी उसे कसकर पकड़कर अपने करीब करता है और अपनी बाहों में भर लेता है। आई एम सॉरी सोना, मुझे शायद ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। तुम फिर से मेरी वजह से रो रही हो तो मैं नहीं पता ये मेरे लिए कितना पेनफुल है, मेरी बीमारियों से भी ज्यादा। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, प्लीज चुप हो जाओ, आदित्य उसे चुप कराने की कोशिश करते हुए बोला। सुनैना भी थोड़ी देर बाद शांत हो गई और फिर नजर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, आदित्य मुझसे वादा करो मेरे लिए तुम अपना ख्याल रखोगे प्लीज, और अपनी सारी दवाइयाँ भी टाइम पर लोगे। सुनैना की इस बात पर आदित्य ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आई प्रॉमिस सोना, मैं खुद को बदलने और तुम्हारे लायक बनने की पूरी कोशिश करूंगा, और तुम भी वादा करो कि तुम इस तरह से रोओगी नहीं। इस बात पर सुनैना ने भी अपनी आंखों से निकलते आंसू पोंछते हुए हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर आदित्य को थोड़ी देर बाद कुछ याद आया तो उसने सुनैना से पूछा, मेरे दोस्त के बारे में बोल रही थी तुम सोना, तुम्हें उसका नाम याद आया? कौन था वो जिसने तुम्हें ये बताया कि मैं लंदन चला गया हूँ? क्रमशः